नमस्कार भारत, 23 मई दिन गुरुवार, मैं हूं वात्सल्य राय। लोकसभा चुनाव में आज नतीजे का दिन, 8 बजे से मतगणना। चुनाव आयोग ने फिर बताया ईवीएम कितनी सुरक्षित।
काउंटिंग डे पे जो स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम्स को काउंटिंग हॉल तक लाया जाता है, ये एक सैनिटाइज्ड कॉरिडोर में अंडर अ सीसीटीवी कवरेज।
मतगणना के पहले जारी है दावों और वार पलटवार का दौर।
इसका मतलब है कि मोदी प्रचार संहिता काम कर रही है,
उनकी हार होने वाली है, इसलिए वो अपनी हार का बहाना ढूंढ रहे हैं।
सीधे चलेंगे लखनऊ, पटना, कोलकाता और भोपाल, परखेंगे मूड। और ब्रिटेन की पीएम टेरेसा मे की बड़ी मुश्किल, हाउस ऑफ कॉमन्स की लीडर ने दिया इस्तीफा।
एंड्रिया लेथम इज द 36th मिनिस्टर जिन्होंने रिजाइन किया टेरेसा मे के लीडरशिप के नीचे।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, गुरप्रीत सैनी से। भारत में आज लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। लोकसभा की 543 में से 542 सीटों पर 7 चरणों में मतदान हुआ था। मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और 8000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होगा। मतगणना से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा की आशंका के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट कर दिया। मंत्रालय का कहना है कि कुछ पक्षों की ओर से किए गए हिंसा भड़काने के आह्वान को देखते हुए यह कदम उठाया गया। ब्रिटेन सरकार में एक प्रमुख मंत्री एंड्रिया लेथम ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री टेरेसा मे पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। एंड्रिया लेथम का कहना है कि उन्हें सरकार की ब्रेग्जिट योजना में भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो सरकार छोड़ रही हैं। कई दूसरे कैबिनेट मंत्रियों ने भी बीबीसी से कहा कि प्रधानमंत्री अब अपने पद पर नहीं रह सकती, लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि टेरेसा मे इस्तीफा नहीं देंगी और गुरुवार को होने वाले यूरोपीय संसद के चुनावों के लिए तैयारियां जारी रखेंगी। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चीजों को छिपाने का आरोप लगाया है। पेलोसी का कहना है कि ट्रंप 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी दखल के मामले की जांच को बाधित कर न्याय की राह में रोड़ा डाल रहे हैं। उनका आरोप है कि राष्ट्रपति संसद की जांच समिति के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं, जांच से जुड़ी फाइलों को रोक रहे हैं और मौजूदा और पूर्व सलाहकारों को समिति के सामने बयान नहीं देने दे रहे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने नैन्सी पेलोसी के बयान पर नाराजगी जताई है और उनके आरोपों को खारिज किया है। पेलोसी ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सदन के डेमोक्रेट सांसदों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पेलोसी ने कहा,
Would you believe that it's important for to follow the facts?
हमारा मानना है कि तथ्यों को देखने की जरूरत है। हमारा मानना है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति भी नहीं, और हमें लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से हमने आज ये बैठक की। ये थे स्पीकर नैन्सी पेलोसी के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बड़ी राजनयिक हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव को भारी समर्थन मिला है जिसमें मांग की गई है कि ब्रिटेन चागोस द्वीपों का नियंत्रण मॉरिशस को सौंप दे। इससे पहले फरवरी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था कि ब्रिटेन ने 1960 के दशक में इन द्वीपों को गैर कानूनी तरीके से मॉरिशस से अलग कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा ने नतीजों का ऐलान किया। उन्होंने कहा,
वोटोस अ फावोर दे ला रेसोल्यूशन 116, वोटोस इन कॉन्ट्रा,
प्रस्ताव के पक्ष में 116 वोट पड़े जबकि इसके खिलाफ 6 वोट पड़े। वहीं 56 मतदाता वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं थे। इसी के साथ मसौदा प्रस्ताव को मंजूर किया जाता है। ये थे संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष के शब्द। कोलंबिया के विदेश मंत्री कार्लोस होम्स ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वो कोलंबिया में रोजाना हजारों की तादाद में आ रहे वेनेजुएला के प्रवासियों के लिए वादे के मुताबिक फंड जारी करें। विदेश मंत्री ने कहा कि कोलंबिया अब तक 12 लाख वेनेजुएलाई प्रवासियों को शरण दे चुका है, लेकिन उन्हें अब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिर्फ 20% फंड ही मदद के तौर पर मिला है। वेनेजुएला में जारी आर्थिक संकट की वजह से वहां के लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। क्या बीती रात बहुत लंबी थी? ये सवाल है, क्योंकि कहा जाता है कि इंतजार की रात लंबी होती है, और 23 मई की सुबह का इंतजार तो पूरे देश को था। आज से नहीं बल्कि 10 मार्च से, जिस दिन 17वीं लोकसभा के लिए चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ था, और चुनाव भी किसी मैराथन रेस जैसा ही तो था। 11 अप्रैल को पहला और 19 मई को आखिरी वोट डाला गया। इस बीच मौसम, मुद्दे और मिजाज बदलते रहे। कई बार तो तय करना मुश्किल हो गया कि कुदरत का तापमान ज्यादा है या फिर नेताओं के बयानों की गर्मी। गर्मजोशी वोटरों ने भी दिखाई। रिकॉर्ड मतदान हुआ। 542 सीटों पर हुए चुनाव में 8000 से ज्यादा उम्मीदवार थे। 90 करोड़ लोगों को वोट का अधिकार हासिल था और इनमें से 60 करोड़ से ज्यादा मतदान केंद्रों तक पहुंचे, यानी उन्होंने वोट डाला। उन्होंने क्या फैसला दिया, ये आज साफ होगा। ठीक 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। पहली बार पेपर ऑडिट ट्रेल का मिलान होगा। 22 विपक्षी दल चाहते थे कि इन पर्चियों का मिलान वोटों की गिनती के पहले हो, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मांग को मंजूर नहीं किया। विपक्ष की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे प्रश्न सिर्फ भ्रांति फैलाने का प्रयास है। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बार फिर ईवीएम के पूरी तरह सुरक्षित होने का भरोसा दिया। उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन को सुनिए।
राइट फ्रॉम द मोमेंट ईवीएम्स मूव आउट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टिल व्हाटएवर स्टेजेस इट गोज थ्रू, इवन बिफोर इलेक्शंस, बिफोर पोल्स, ड्यूरिंग पोल्स, एट द टाइम ऑफ काउंटिंग, इलेक्शन कमीशन के किसी भी अधिकारी को उसको एक्सेस करने का अधिकार नहीं है। अनलेस अ रिटन नोटिस इज गिवन टू द कैंडिडेट्स और द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ओनली इन देयर प्रेजेंस द ईवीएम्स आर टच्ड। काउंटिंग डे पे जो स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम्स को काउंटिंग हॉल तक लाया जाता है, ये एक सैनिटाइज्ड कॉरिडोर में अंडर अ सीसीटीवी कवरेज जो कैंडिडेट काउंटिंग हॉल में से व्यू कर सकते हैं।
चुनाव आयोग से मिला भरोसा अपनी जगह, लेकिन फिर भी कई जगह राजनीतिक दलों के नुमाइंदे ईवीएम की निगरानी में जुटे रहे। इनके लिए रात लंबी रही होगी। सवाल एग्जिट पोल को लेकर भी उठे, और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण हैं, सतर्क और चौकन्ना रहें। यानी कहीं आशंका है, कहीं उम्मीद है, कहीं उत्साह है, और हर किसी को इंतजार है मतगणना शुरू होने का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल। स्वागत है सर आपका।
धन्यवाद।
मैं ये जानना चाहूंगा, नतीजे के पहले एक जो बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बदलेगी सरकार या फिर एक बार मोदी सरकार, और क्या ये जो नतीजे आएंगे ये मौजूदा सरकार पर जनमत संग्रह की तरह देखे जाएंगे?
देखिए, ये तो बात बिल्कुल तय है कि मौजूदा सरकार का जनमत संग्रह है। ये 5 वर्षों में ये सरकार ने जिस तरह से काम किया है उसका परिणाम आज नतीजे जो आएंगे वो बता देंगे। लेकिन जो दूसरा आपका पहला सवाल था वो ये है कि क्या सरकार बदलेगी। फिलहाल मौजूदा जो इस समय जो एग्जिट पोल आए हैं, 10 में से 9 एग्जिट पोल तो ये इशारा कर रहे हैं कि सरकार शायद बनी रहेगी।
लेकिन उन एग्जिट पोल पर सवाल भी कई उठे हैं, और ये पुराने रिकॉर्ड को भी दिखाया गया है कि कब कब एग्जिट पोल गलत रहे हैं।
जी, एग्जिट पोल की दरअसल हिस्ट्री में यूं है कि करीब करीब आप माने 55-60% इनका जो सफलता का प्रतिशत है वो ये है।
जी,
शुरुआती दौर में होता ये था कि कई तरह की जो कंपनियां सर्वेक्षण कराती थी इस तरह का, उनके पास प्रोफेशनल्स नहीं होते थे, तैयारियां नहीं होती थी, मीडिया सर्वे कैसे।
लेकिन आज जिस तरह से माहौल बदला है, लेकिन सवाल भी कई उठे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। उसके पहले हम अपने श्रोताओं को जरा याद दिला देते हैं कि इस चुनाव के दौरान किस तरह के रंग दिखाई दिए। हमारे संवाददाता नवीन नेगी की रिपोर्ट।
आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को था। आज यानी 23 मई को हिंदुस्तान की जनता के सामने उसकी नई सरकार का चेहरा साफ हो जाएगा। भारत में किस दल या गठबंधन की सरकार बनेगी यह तो मतपेटियों के खुलने के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन उससे पहले एक नज़र इस सरकार को चुने जाने वाले महापर्व पर डाली जाए। वह महापर्व जिसमें भारत की जनता ने लोकसभा की 542 सीटों के लिए पिछले 6 हफ्तों में 7 चरणों में मतदान किया। पहले चरण का मतदान जहाँ 11 अप्रैल को हुआ, तो वहीं अंतिम चरण के लिए 19 मई को वोट डाले गए। इस 1.5 महीने के भीतर भारत की जनता ने अपने राजनेताओं के कई रंग रूप देखे, कई तरह के नारे सुने और खुद भी उन्हें दोहराया।
चौकीदार, चौकीदार, देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार, आतंक पर हो आखिरी बार।
यह चुनाव विवादों से भी दूर नहीं रहा। चुनावी रैलियों में भाषा के स्तर के गिरने की चिंता सभी ने जाहिर की, लेकिन हर बार वह स्तर और ज्यादा गर्त में जाता हुआ महसूस हुआ।
साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। इतना ही नहीं, मुझे रैबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया।
भाषाई हमलों के अलावा पश्चिम बंगाल में हर चरण के मतदान में चुनावी हिंसा देखने को मिली। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के नेता इस हिंसा के आरोप एक दूसरे पर मढ़ते रहे।
क्या हमको भाषण भी नहीं देंगे? हमको बोलने का भी मौका नहीं है? फ्रीडम ऑफ प्रेस भी नहीं है? किसी को बोलने का मौका नहीं है? ऐसा ही चलेगा देश में? इसको एक भी वोट मत दीजिए। मेहरबानी करके मेरे माई माँ, मेरे भाइयों, मेरे पापा जी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, नौजवान लोग, मोदी को हटाओ, मोदी को देश से निकाल दो इलेक्शन का थ्रू में।
इतना ही नहीं, इस बार के चुनावी रंग से चुनाव आयोग भी अछूता नहीं रह सका और उस पर भी कई तरह के इल्जाम लगे।
इलेक्शन कमीशन का जो इस इलेक्शन में रोल रहा है वो बायस्ड रहा है। नरेंद्र मोदी जो भी बोलना चाहते बोल देते हैं, उसी बात के लिए किसी और को टोका जाता है। और एक और बात में पार्शियलिटी दिखी है, जो ये पूरा चुनाव का शेड्यूल है, मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जी के कैंपेनिंग के लिए बनाया गया है।
आज मतगणना पूरी होने के साथ लोकसभा चुनाव का यह महापर्व भी संपन्न हो जाएगा। देखते हैं इस महापर्व में किसे विजय मिलती है और किसे मात।
रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें देश की सरकार की सूरत तय करती है और इस वक्त लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। स्वागत है फैसल साहब आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया।
इस बार तो एक लैबोरेटरी बना हुआ था उत्तर प्रदेश, नरेंद्र मोदी का मेगा शो, 25 साल के बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री और यूपी का प्रभार, बहुत कुछ देखा यूपी ने। आज क्या आप देख रहे हैं वहाँ?
यहाँ स्ट्रांग रूम जहाँ मतगणना अभी कुछ देर में, लगभग एक घंटे में शुरू होने वाली है, रमाबाई अम्बेडकर मैदान में, उसके सामने बिल्कुल नजर आ रहा है सभी पार्टियों के वर्कर्स तो आ ही रहे हैं, उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स बना के वहाँ बैठे हुए हैं और भीड़ जमा होती जा रही है। उसके अलावा पार्टियों में लोग होंगे ही, लेकिन जैसा आपने कहा वात्सल्य, कि जो पार्टियों के जो दफ्तर हैं जहाँ कल और मुझे जाने का इत्तफाक हुआ, वहाँ उस हिसाब से थोड़ा सब्ड्यूड कल नजर आई चीजें। जैसे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी थोड़ी चीजें जो है वो मध्यम नजर आई, बड़े नेता नहीं नजर आए। उसी तरह से कांग्रेस का दफ्तर तो खाली था। और ये आपने बताया एक अच्छी बात कि एक तरह की लैबोरेटरी बन गई है, इतने सालों के बाद आई है बसपा और सपा साथ साथ, बल्कि जो फेमस या इन फेमस कहें जो वीआईपी गेस्ट कांड हुआ था, मुलायम सिंह और मायावती एक साथ भी नजर आए। और प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत झोंकी कल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदेश के जो है नवीन श्रीवास्तव, उनसे बात हुई और हमने पूछा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहाँ किस तरह रहा, तो वो ये बोले।
154 हमारे कार्यक्रम थे, कमल ज्योति, बाइक रैली, हमारे इस प्रकार के। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 29 सभाएं की हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने 28 सभाएं की इस चुनाव के दरमियान
जी।
तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन जो दूसरी दिलचस्प चीज वात्सल्य हुई है कि वो दो दिनों पहले जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को जो आय से ज्यादा संपत्ति
अधिक का मामला था जी,
उसमें जब उनको जो छोड़ दिया गया ना, उसको लेके बहुत तरह की यहाँ पर अफवाहें उड़ रही है। उस पर हमने कांग्रेस के एक नेता से बात की, तो उनका क्या कहना था, किस तरह की अफवाहें हैं?
देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि जितने ये सर्वे आ रहे हैं, जितने ये एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड सर्वे आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बताता है कि इलेक्शन से पहले उनके खिलाफ केस खोलना और रिजल्ट के आने के सिर्फ एक दिन पहले वो केस बंद कर देना कहीं ना कहीं बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अल्पमत में आ चुके हैं और अब वो दूसरे जो पार्टीज हैं उनके ऊपर उन्होंने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। और हमें लगता है उसी की एक ये पहल है कि मोदी अमित शाह जी को पता है कि जिस दिन वो सत्ता से बाहर होंगे जितने घोटाले और घपले इनकी सरकार ने किए हैं उन सबकी फाइलें खुलनी शुरू हो जाएंगी।
जी, फाइलें खुलने की बात हो रही है फैसल साहब, बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। हम शाम के कार्यक्रम में आपके पास दोबारा लौटेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। बादल साहब, यूपी बड़ी नजर है, इस पर आप कैसे देख रहे हैं?
आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था कि एक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश बन गया है और इस प्रयोगशाला में इस बार हम देख रहे हैं कि बड़े दिलचस्प संयोग बन रहे हैं। अनेक वर्षों तक कांग्रेस इस राज्य में सत्ता में रही और इस चुनाव में प्रियंका गांधी के जरिए वो अपनी जमीन तलाशते हुए नजर आ रही है। जो उसका वोट बैंक था बहुजन समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी के पाले में है, दोनों पार्टियां कांग्रेस से दूर रह रही हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं वोट बैंक खिसक ना जाए
जी,
और वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी कभी कोई जमीन नहीं थी वो वहां आज शासन में है
जी।
तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन ये बात कुल मिलाकर के कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में वहाँ नुकसान में है।
नुकसान में है बिल्कुल। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि चुनाव के नतीजों को आप तक पहुंचाने के लिए बीबीसी हिंदी ने भी खास इंतजाम किया है। क्या है वो खास तैयारी, बता रहे हैं हमारी सहयोगी गुरप्रीत सैनी। जी गुरप्रीत
जी, वत्सल, बीबीसी हिंदी पर चुनाव नतीजों की जानकारी जनता लगातार हासिल कर सकती है। नतीजों की जानकारी को देखने सुनने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं। बीबीसी हिंदी की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज के साथ साथ ट्विटर के जरिए पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाती रहेंगी। अब से कुछ ही देर में आपको बीबीसी हिंदी के स्टूडियो से लाइव कवरेज मिलना शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनावों के ताज़ा तरीन रुझान और नतीजे आप तक लगातार पहुँचाए जाएंगे। बीबीसी के रिपोर्टर देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, वो पूरे दिन ताज़ा रिपोर्ट पहुँचाते रहेंगे। इस दौरान बीबीसी के स्टूडियो में जाने माने विश्लेषक और कई वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे जो नतीजों और रुझानों की समीक्षा करेंगे। अब आपको बता देते हैं कि हमारे रेडियो के श्रोताओं के लिए आज क्या कुछ खास है। आज रेडियो पर भी बीबीसी हिंदी 2 घंटे का विशेष प्रसारण करेगा। शाम 7:30 से 9:30 बजे तक रूपा झा, रेहान फजल, राजेश जोशी और सुशीला सिंह इस विशेष चुनावी सभा को पेश करेंगे। ये प्रसारण रेडियो के साथ साथ बीबीसी हिंदी की वेबसाइट और फेसबुक पन्ने पर भी सुना जा सकेगा।
बहुत शुक्रिया गुरप्रीत हमारे श्रोताओं को अपडेट करने के लिए कि कैसे वो चुनाव नतीजों की जानकारी बीबीसी पर हासिल कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा उत्सुकता पश्चिम बंगाल के नतीजों को लेकर है। सबसे ज़्यादा मतदान वहीं हुआ, सबसे ज़्यादा हिंसा भी वहीं हुई। हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं इस समय हमारे संवाददाता सलमान रावी। स्वागत है सलमान साहब आपका।
जी सुप्रभात, और स्वागत है आप सब श्रोताओं का भी और आपका भी।
सर, सबसे ज्यादा नजरें सलमान साहब आपके ऊपर ही हैं, जहां मोदी बनाम दीदी मतलब दा और दा तो मिल रहा है, क्या देख रहे हैं आज, क्या मूड है वहां?
देखिए, यहां तो बहुत ही कांटे की टक्कर है, काफी चुनावी हिंसा हुई है और 42 सीटें हैं कुल मिलाकर यहां पर पश्चिम बंगाल में, जिसमें से 34 तृणमूल कांग्रेस के पास थी और 2 पर बीजेपी थी। लेकिन जो रुझान बता रहे हैं उसमें बीजेपी ने पिछले 2-3 सालों में जो काम किया है यहाँ उसे काफी डेड मारा है तृणमूल कांग्रेस के वोटों में और वोट शेयर में। तो ये बड़ा दिलचस्प पहलू होगा। मैं नेताजी इंडोर स्टेडियम जो काउंटिंग बूथ है उसके सामने खड़ा हुआ हूँ। जैसे बहुत चर्चित ईडन गार्डन्स, आपको पता होगा जहाँ मैचेस खेले जाते हैं, उसके ठीक बगल में ये जगह है तृणमूल कांग्रेस के और विभिन्न राजनीतिक दलों के, भारतीय जनता पार्टी के जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा बल के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी है। और जैसा कि आपने बताया कि हिंसा सबसे ज्यादा यहाँ हुई है चुनाव के दौरान, इसलिए कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहता है प्रशासन बहुत बड़े पैमाने पर।
जी, और गृह मंत्रालय ने भी इसी को लेकर अलर्ट जारी किया है।
जी, और एक चीज और भी है कि जो मजेदार जो लड़ाइयां हैं रोचक, वो कलकत्ता नॉर्थ सीट पर होगी, जिसमें राहुल सिन्हा जो बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं वो लड़ेंगे सुदीप बंदोपाध्याय से। ये लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर है लोकसभा में, इनसे इनका मुकाबला होगा। और सबसे ज्यादा जो हिंसा हुई है बैरकपुर सीट पर, जिसमें अर्जुन सिंह जो पहले
टीएमसी में हुआ करते थे, वो अब पाला बदल के बीजेपी की तरफ आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और मुनमुन सेन की फाइट पर भी नजर होगी। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। बादल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चुनाव में जो परंपरा दिखी पश्चिम बंगाल में, वो लगभग वही थी, वाम दल हट गए थे, उनकी जगह बीजेपी ने ले ली, लेकिन क्या परिणाम में कोई अंतर आता हुआ देख रहे हैं?
देखिए, परिणाम का जहां तक हम बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को इस बार थोड़ा सा नुकसान होते नज़र आ रहा है, और इस क्षति का आधार है भारतीय जनता पार्टी ने ख़ासतौर पर पिछले साल 3 राज्यों में हार के बाद जिस तरह से बंगाल में अपनी चुनावी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो राजनीतिक कोशिशें की हैं, वो इसलिए कि क्योंकि इन 3 राज्यों का जो गड्ढा बन रहा है वो उसको कहीं ना कहीं पूरा
पश्चिम बंगाल से,
और पश्चिम बंगाल ही एकलौती आशा भारतीय जनता पार्टी,
ओडिशा भी उनके साथी, ओडिशा
में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओडिशा में उनको इस तरह से कोई फायदा होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो यकीनन फायदा होगा।
जी, जिन 3 राज्यों में की आपने अभी बात की जहां सरकार बदली, उनमें से एक राज्य पर बहुत ज्यादा नजर है, वो है मध्य प्रदेश, जहां भोपाल की लड़ाई तो सुर्खियों में रही है, बाकी जगह भी साख की लड़ाई है। हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई है हमारी संवाददाता प्रियंका दुबे। जी प्रियंका, स्वागत है आपका।
आपका भी स्वागत है झीलों की नगरी भोपाल से, और सभी श्रोताओं का स्वागत है यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहूंगी, काफी गहमा गहमी है। कल शाम तक, देर रात तक हम शहर के चक्कर लगा रहे थे, और अभी सुबह भी तफरी के लिए निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। कांग्रेस के कार्यालय के आसपास काफी शांति दिखाई देती है, और लेकिन बीजेपी के मुख्य कार्यालय में जो यहाँ पे है, वहाँ पे काफी हलचल अभी से शुरू हो गई है। लोग धीरे धीरे जुटना शुरू हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नजर सबकी इस चुनाव में जिस सीट पर है वो भोपाल की सीट है। बहुत ही सबसे ज्यादा विवादित सीटों के तौर पर ये उभर के आई, अचानक से उभर के आई इस चुनाव में। प्रज्ञा ठाकुर और दिग्विजय सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। इतना पोलराइज्ड इलेक्शन भोपाल ने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं देखा।
तो कैसा लग रहा है ये संघर्ष, क्या एक तरफा वहाँ के लोग बता रहे हैं या टक्कर मुकाबले की है?
मेरे की कुछ भी कहना सीधे तौर पर बहुत मुश्किल है, लेकिन जो जो मुझे बात करके लोगों से, और यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं जितने भी, उन सबसे और आम लोगों से बात करके जो फील आ रहा है कि अगर आप एक व्यक्ति, अगर आप एक पार्टी का समर्थक आपको मिलता है तो दूसरा दूसरी पार्टी का, तो काफी कांटे की टक्कर लग रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट फाइनल पता चलने में, रुझान जो शुरू हो जाएंगे अभी हाल ही में आना, लेकिन जो अंतिम रिजल्ट है उसमें वक्त लग सकता है। उसके साथ ही जो बड़ी सीटें यहाँ पर जिनकी, जिसपे सबकी नजर बनी रहेगी, 29 सीटें लोकसभा सीट है भोपाल में, उनमें गुना है और गुना के साथ छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा से सिटिंग चीफ मिनिस्टर कमलनाथ के बेटे पहली बार चुनाव
मैदान में है,
मैं उतर रहे हैं, और गुना जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट मानी जाती है,
वहाँ भी कांटे की इस बार लड़ाई बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका इस पूरे अपडेट के लिए। बादल साहब, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात हो रही है इसलिए एक कमेंट आपसे तो लिया जाना बनता ही है। मध्य प्रदेश जहां पिछली बार बीजेपी ने डोमिनेट किया था, लेकिन हाल में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, अब लोकसभा चुनाव, आप क्या असर देख रहे हैं? क्या कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी या बीजेपी अपना किला बचाएगी?
देखिए, पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई थी। अब कांग्रेस की सत्ता है, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये तो तय है कि इस बार कांग्रेस ने चुनाव अच्छा लड़ा है, और मैं कह सकता हूं कि पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस ने अब तक का सबसे अच्छा चुनाव लड़ा है।
जी,
प्रत्याशी बढ़िया उतारे हैं, और जो मेरा अनुमान है कि 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी मिल सकती है।
मिल सकती है, लेकिन एग्जिट पोल कुछ और बता रहे हैं, लेकिन
वही
मैंने कहा ना कि एग्जिट पोल का मुद्दा है।
जी,
नतीजे
जी,
आएंगे, वो सामने बातें आएंगी। और अब हम रुक करते हैं उस राज्य का जिस पर सबकी नजर है, 40 सीटें जहां से है, बिहार। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद, जो बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं। स्वागत है इकबाल साहब आपका।
जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
तो इकबाल साहब, आप वहां मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? तीर निशाने पर लगेगा या लालटेन की रोशनी बिहार को जगमग करेगी? क्या सीन है वहाँ?
देखिए, अब कुछ ही घंटों की बात है, इसलिए कोई पहले से अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है,
लेकिन बिहार में तीन चुनाव में 2014 से 19 के बीच में अगर बात करें तो 3 तस्वीरें बनी। पहले बीजेपी ने छोटे दलों के साथ मिलकर 2014 में गठबंधन किया था, 2015 में आरजेडी और जेडीयू, बहुत दिनों का जिस तरह का महागठबंधन अभी यूपी में बना है वैसा बिहार में प्रयोग पहला हुआ। तीसरा अब है कि दोबारा जेडीयू बीजेपी के खेमे में लौट आई है। तो ये जो समीकरण बदल रहे हैं, अलग अलग नतीजे पहले 2 चुनावों में हमने देखे, इस बार क्या उम्मीद है वहाँ के लोग कर रहे हैं, मैं इस लिहाज से जानना चाहूँ।
देखिए, एक जो यहाँ चुनाव बिहार में हुए हैं उसमें 2 सबसे अहम बात है। एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी छवि कैसी है मतदाताओं के बीच में, और दूसरे जो राष्ट्रीय जनता दल है RJD और कांग्रेस का जो गठबंधन, उस गठबंधन में तीन नई पार्टियां जुड़ी हैं जिसमें मांझी की हम है, उपेंद्र कुशवाहा की RLSP है, और उसके अलावा एक नए व्यक्तित्व का उभार बिहार की राजनीति में हुआ है मुकेश सहनी का, जो अपने आप को सनफ मल्लाह कहलाना पसंद करते हैं, उनकी VIP पार्टी
जी।
तो ये गठबंधन काफी सशक्त है, काफी मजबूत है अगर आप जमीन पर देखें। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, उन दोनों की छवि भी बहुत ज्यादा अच्छी है बिहार के मतदाताओं के बीच में। तो ये दोनों लड़ाई है, अब इसमें गठबंधन आगे निकलता है
या NDA आगे निकलता है ये देखने की बात होगी, और खास तौर पर जब
बहुत कांटे की टक्कर है
जी। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, और अब हम रुक करेंगे कर्नाटक का, जहां बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं इमरान कुरैशी जी। स्वागत है इमरान साहब आपका।
गुड मॉर्निंग
जी। इमरान साहब, मैं जानना चाहूंगा, जो विपक्षी एकता की बात हो रही है उसकी पहली तस्वीर कर्नाटक में जब सरकार बनी तब दिखाई दी थी, आज किस तरह की तस्वीर बेंगलुरु से निकलती देख रहे हैं आप?
जी, जो भी नतीजा आए, अगर कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर जो गठबंधन सरकार चला रही है यहाँ, अगर उनको कम सीटें मिली, तो इस पर इसका इसका इसके आधार पर सरकार नहीं गिरेगी
जी।
मगर अगर केंद्र में BJP सरकार आई
जी,
BJP या NDA सरकार आई, तो BJP को यहाँ एक और मौका मिलेगा ऑपरेशन कमला चलाने के लिए, पहली बात वो। दूसरी बात ये है कि कर्नाटका में एक दो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा को, कुंगोल और चिंचोली से, अगर वो दोनों सीटें कांग्रेस हारी तो BJP का नंबर 104 से 106 हो जाएगा। इससे BJP को बहुत उत्साह मिल जाएगा कि फिर से ऑपरेशन कमला चलाने के लिए। तो ये, हालांकि कुमार स्वामी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दी है कि सरकार नहीं गिरेगी, मगर कुछ नहीं कह सकते,
कह नहीं सकते। फिलहाल ये स्थिति, आप नजर रखिए, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। और इस बीच एक मैं आपसे भी कमेंट लेना चाहूंगा बादल साहब की, जो पूरी स्थिति है उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, क्या तस्वीर आप उभरती हुई देख रहे हैं? एक आखिरी कमेंट आपका।
देखिए, उत्तर भारत में तो जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है उसमें तो मुझे बहुत सुधार की संभावना नहीं दिखती
जी।
और उसका कारण है, 15 वर्षों से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सत्ता में थी, अभी तक वो संभल नहीं पाई है हार से। राजस्थान में भी बड़ी जो उसकी हार हुई थी वो है, उत्तर प्रदेश के 3 उपचुनावों में वो हारी है, कुछ और उपचुनावों में उसने पराजय का सामना किया है, महाराष्ट्र में उसकी स्थिति कमज़ोर होते दिख रही है, पश्चिम में गुजरात में देखें तो वहाँ कम से कम 7-8 सीटों का नुकसान उसको होते दिख रहा है। तो पिछले चुनाव की जो स्थिति है वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जा रही है जैसी पिछले चुनाव में थी, और उस वक्त मोदी की लहर भी थी, इस वक्त शायद लहर उस तरह से नहीं है। हाँ, उनके पक्ष में कुछ है, अंडरकरंट है, मैं इसको खारिज नहीं करता, लेकिन
वो जो बात पिछले चुनाव में 2014 में थी वो इस बार आप नहीं देख पा रहे हैं। हकीकत में क्या हुआ है, मतदाताओं ने किसका समर्थन किया है, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होनी है, और हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें कि हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। आप BBC पर, हमारी वेबसाइट पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप आकर देख सकते हैं लगातार ताजा अपडेट। और अब चलते चलते मुख्य समाचार गुरप्रीत सैनी से।
चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। लोकसभा की 543 में से 542 सीटों पर 7 चरणों में मतदान हुआ था। ब्रिटेन सरकार में एक प्रमुख मंत्री एंड्रिया लेट्सम ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री टेरेजा मे पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चीज़ों को छिपाने का आरोप लगाया है। पेलोसी का कहना है कि ट्रंप 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी दखल के मामले की जाँच को बाधित कर न्याय की राह में रोड़ा डाल रहे हैं। ब्रिटेन को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बड़ी राजनयिक हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव को भारी समर्थन मिला है जिसमें मांग की गई है कि ब्रिटेन चागोस द्वीपों का नियंत्रण मॉरिशस को सौंप दे। कोलंबिया के विदेश मंत्री कार्लोस होम्स ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वो कोलंबिया में रोजाना हजारों की तादाद में आ रहे वेनेजुएला के प्रवासियों के लिए वादों के मुताबिक फंड जारी करे।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। बादल साहब चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका शुक्रिया। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। आपसे अगली मुलाकात शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। आज होगा 2 घंटे का विशेष प्रसारण। तब तक खबरों की जानकारी के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।